शांति। तो आज का विषय है द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन इन रिलेशनशिप। हमारी जो बातचीत करने का तरीका है, संबंध संपर्क में जब हम आते हैं तो कैसा होना चाहिए, क्योंकि जो कम्युनिकेशन सिस्टम है ये हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इसके मायने हैं, अहमियत है। आज ही बाबा ने मुरली में कहा कि तुम श्रेष्ठ आत्माएं हो, कोटों में कोई आत्माएं हो, तो श्रेष्ठ आत्माओं का जो कम्युनिकेशन है वो भी श्रेष्ठ होना चाहिए। चाहे लौकिक जीवन में चाहे अलौकिक जीवन में कम्युनिकेशन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसा हमारा कम्युनिकेशन होता है उसी के आधार पर हमको रिस्पांस मिलता है। वर्तमान समय भी अगर देखा जाए, अगर संबंधों में दूरियां बढ़ती जा रही हैं तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है, और उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कि वो गैप क्यों बढ़ता जा रहा है, क्यों संबंधों में दूरियां बढ़ती जा रही हैं, रिश्तों में कड़वाहट क्यों बढ़ती जा रही है। एक ही परिवार में होते हैं, मां बाप बच्चों से दूर हो रहे हैं या बच्चे मां बाप से दूर हो रहे हैं, एक दो की बातें अच्छी नहीं लग रही हैं, या उन बातों को मां बाप की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए बच्चे अपने आप को योग्य नहीं समझते हैं, या उनकी अपेक्षाओं पर चलना नहीं चाहते हैं, या जबरदस्ती उन पर थोपा जा रहा है। तो इस जीवन में भी हमको बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है जांचने परखने की, समय परिस्थिति व्यक्ति कैसा है माहौल कैसा है, उसी अनुसार अगर हमारा कम्युनिकेशन नहीं है तो कहीं ना कहीं वो कम्युनिकेशन फिर उन्नति में बाधक बन जाता है, उससे हमारे जीवन में संतुष्टता नहीं रहती है। जैसे बताया मीठी वाणी बोल रहे, तो वाणी एक ऐसी चीज है कि यही वाणी जो है बाण का काम भी करती है, और यही वाणी बांसुरी का भी काम करती है, हाँ जी तलवार का भी काम करती है, तोप का भी काम करती है, हाँ जी रामबाण भी बन सकती है, नहीं तो अग्नि बाण भी है रामबाण भी है। हाँ, तो बाबा ने कहा ये कल था ना, कल की मुरली में था कि तुम्हें मनसा बाचा कर्मणा बहुत खबरदारी रखनी अपनी जुबान पर, कल की मुरली में था। और आने वाले कल की मुरली में है, कई के बच्चे ऐसे हैं जैसे मुख से तोप निकालते हैं, तोप बॉम्ब्स, तो ये ऐसी है। तो एक जगदीश भाई के आर्टिकल में था कि ये जो मुख है ना, इसमें बहुत सारे यंत्र हैं, ये जो होंठ है ये बांसुरी का काम करना चाहिए, और जो ये तालु है ये तबले का काम करना चाहिए, और ये जो दांत है हारमोनियम का काम करना चाहिए, और ये जीव है ना, ये जैसे जीव हमेशा चाशनी में डूबी रहनी चाहिए, मिठास इस जीव से जुबान से जैसे मिठास निकलनी चाहिए, टपकना चाहिए, शायद शायद टपकता रहना चाहिए, जैसे मधुमक्खी की छत्ते से शायद टपकता रहता है। तो उसमें बताया कि शिव बाबा का चित्र भी कैसा है, मधुमक्खी की छत्ते जैसा है ना, जैसे मक्खी है जब शहद प्राप्त करने जाती है तो वो बहुत इधर उधर भागती है, कभी इधर बैठेगी कभी उधर बैठेगी, चंचल होती है उस समय, लेकिन जब वह शहद लेकर वापस आती है छत्ते पर, वो वहां उसकी चंचलता समाप्त हो जाती है, एक ही स्थान पर वो बैठ जाती है जब। तो उसी तरह से हम संसार में हमारा जो मन है इधर उधर भटकता रहता है, लेकिन जब हम एक ही बाबा के ऊपर एकाग्र हो जाते हैं तो मन शांत हो जाता है, बाहों उसको अथाह प्राप्तियां होती। आज ही था ना मुरली में कि ये पदम, ये प्राप्तियों का युग है, एक के बजाय एक से पदम की प्राप्ति होती है। तो हमको कम्युनिकेशन स्किल जो है ये दिन प्रतिदिन हमारी डेवलप होती जानी चाहिए, और इसके कैसे डेवलप किया जाए इसमें बहुत सारी बातें सीखने की होती हैं, और सीखने के लिए सबसे बेहतर मंच होता है संगठन, या व्यक्तिगत तौर भी हम कहीं किसी के संबंध संपर्क में आते हैं तो भी हम बहुत सारी बातें सीख सकते हैं। और उसमें किसी विशेष कोई आयु वर्ग की बात नहीं है, चाहे कोई छोटा बच्चा है चाहे बड़ा है, किसी से भी कुछ भी हम सीख सकते हैं अगर हमारा अंदर में वो एटीट्यूड है। तो अगर हमारी कम्युनिकेशन में दिन प्रतिदिन निखार आता जाएगा तो वो फिर ईश्वरीय सेवा में या संसार में जो हम कर्म क्षेत्र प्राप्त हैं तो वहां भी बहुत उपयोगी साबित हो सकती है वो। तो कम्युनिकेशन में हमारे अंदर सबसे पहले तो आत्मीयता होनी चाहिए, जब भी हम किसी से बातचीत करते हैं तो आत्मीयता का भाव होना चाहिए। एक है काम चलाओ, लेकिन दूसरा है सामने वाले को भी अपना समझ के हम बात करते हैं, और वो आत्मीयता का भाव हमको बाबा वो पाठ पढ़ाते हैं, आत्मीयता का भाव कैसे जागृत हो वो पाठ हमको बाबा पढ़ाते हैं कि तुम बच्चे आपस में आत्मा भाई भाई हो, परम धाम में तो भाई बहन ही है। कल तीन चार दिन पहले मुरली में था ना, वहां केवल भाई और बाप का संबंध है। तो उसी तरह से इस कर्म क्षेत्र जब हम आते हैं तो आत्मीयता का अगर भाव है तो कम्युनिकेशन हमारी स्वतः ही श्रेष्ठ होती जाएगी, और वो आत्मीयता का भाव हमको आत्मिक स्थिति में स्थित रहने से ही हमारा मजबूत होगा। अगर लंबे समय से हम स्थिति का अभ्यास करते हैं तो हमारी व्यवहारिकता में हमारा कम्युनिकेशन जो सिस्टम है धीरे धीरे स्वतः श्रेष्ठ होता जाएगा। अगर आत्मीयता का भाव नहीं है तो दूरियां बढ़ती जाएंगी, इसलिए रिश्तों में दिन प्रतिदिन दूरियां क्यों बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि वहां बहुत सारा स्वार्थ है, अभी स्वार्थ बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन, आत्मीयता का भाव खत्म होता जा रहा है, इसलिए बाप बच्चों को नहीं समझ रहा है, बच्चे बाप को नहीं समझ रहे हैं, और संसार में बहुत सारा ऐसी विसंगतियां पैदा हो रही हैं। अभी नीचे जो कॉन्फ्रेंस हुई शांतिवन में तो उसमें बहुत अच्छे अच्छे लोग आए थे, एक उसमें आए थे एक सेवियर अर्थ संस्था है, रवि कालरा उसके संस्थापक हैं, तो उन्होंने अपने जीवन का बहुत अच्छा अनुभव सुनाया, उन्होंने भाषण नहीं दिया लेकिन अपना अनुभव सुनाया जीवन का, कि कैसे संसार में जो रिश्तों में दूरियां बढ़ती जा रही हैं आजकल, माँ बाप बच्चों में परिवार में कितनी दूरियां बढ़ रही हैं और कितनी कड़वाहट पैदा हो रही है, एक दूसरे का मुंह तक नहीं देखना चाहते हैं। तो अपनी लाइफ का अनुभव बता रहे थे कि मेरा जो जीवन है बहुत अभावों भरा जीवन गुजरा है, नंगे पांव मैं स्कूल में जाता था, फटी निक्कर पहनी होती थी और पढ़ाई में मैं बहुत नालायक था। आज वो बहुत फेमस है वो, तो वो जब अपना परिचय देते कहते थे मैं पहले जब मंच पर जाता तो मैं अपना जो ये अपना योग्यता थी वो छुपाता था, मैं नहीं बताता था लोगों को मैं इतना पढ़ा हुआ हूं। तो उन्होंने बताया कि मैं अभी छुपाता नहीं हूं। तो बोले मैं सातवीं में फेल हो गया, बड़े मुश्किल से पास हुआ, फिर आठवीं में फेल हो गया, फिर नौवीं में फिर कंपार्टमेंट आई, फिर इस तरह से आगे आगे उन्होंने टेंथ ट्वेल्व तक पढ़ा, फिर धीरे धीरे वो बिजनेस की लाइन में उतरे, तो धीरे धीरे उन्होंने बहुत सारी अचीवमेंट प्राप्त कर ली, बहुत सारी प्रसिद्धि पा ली, फिर विदेशों में जाना शुरू कर दिया। तो उन्होंने इतना पैसा कमा लिया, बोले एक दिन की मेरी जो इनकम थी 4 लाख इनकम हो जाती थी एक दिन की, और 48 कंट्री में वो उन्होंने टूर किया बिजनेस के क्षेत्र में, और फर्स्ट क्लास बिजनेस क्लास में वो एरोप्लेन में जाते थे। लेकिन बोला अंदर में एक बहुत आत्मग्लानी होती थी कि मैं कहीं ना कहीं अपने कर्तव्य के विमुख होता जा रहा हूं, क्या मेरी जिम्मेवारियां समाज के प्रति कुछ है नहीं है, क्या मैं ऐसे घूमता रहूंगा। तो बोला मुझे अपना ही बचपन मुझे अंदर में चुटता रहता था। तो एक बार वो और विदेश में बहुत सारे अच्छे अच्छे उनके संबंध संपर्क आ गए, यहां तक कि विदेशी सेनाओं को भी वो ट्रेनिंग वहां भी उनका योगदान होने लगा, मार्शल आर्ट कराटे सिखाना बहुत आगे बढ़ गया। लेकिन एक बार बोला मैं दिल्ली में ट्रेन में सफर कर रहा था तो एक बच्चे को और कुत्ते को एक ही डस्टबिन में खाते हुए देखा मैंने, माना उसी से बच्चा खा रहा उठा के और उसी से कुत्ता खा रहा। तो बोला वही मेरे अंदर में वो पूरी बचपन की यादें वापस लौट आई। तो वहीं से वो ट्रेन से उतरे और वहीं से सीधा शमशान घाट चले गए और वहां से राख पकड़ के अपने माथे में लगा दी कि आज से मेरा जीवन है वो मानवता के लिए है, मैं कर क्या रहा हूं और करना क्या मुझे चाहिए। तो अंदर से वो आत्मीयता का भाव जागृत हुआ और जब से उन्होंने सेवा चालू की जब वो, और फिर वो तो परिवार में उनको बहुत सारे संकट आए क्योंकि परिवार से एकदम अलग जुदा जुदा मना रहे साथ ही, लेकिन उनकी जो सोच है वो चेंज हो गई, तो परिवार ने भी साथ देना बंद कर दिया, लेकिन उन्होंने अपनी सेवा नहीं छोड़ी। फिर उनकी सेवा ये थी कि सड़कों पर जाना, लोगों को देखना, कहाँ कोई नाली में पड़ा हुआ है, किसी को पूछने वाला नहीं है, किसी के माँ बाप ने बच्चों ने माँ बाप को छोड़ दिया हुआ है। और बोला आजकल तो ऐसे बच्चों ने माँ बाप को छोड़ा हुआ जो बच्चे IAS हैं। बोला एक व्यक्ति तो हमको सड़क पर मिला जो सुप्रीम कोर्ट में जज था और अभी सड़क में है, उसको पूछने वाला नहीं है, पांव उसका घाव से भरा हुआ है। तो वो सबको इकट्ठा करके उसने सेवियर अर्थ की संस्था नाम से उसकी स्थापना की, फिर वहां उनकी सेवा शुरू की। तो आत्मीयता का भाव अंदर में है वो, फिर उस सेवा धीरे धीरे बढ़ती गई। और किसी का कोई नहीं है तो फिर उनको प्रशासन भी उनको ढूंढता था और जो भी लावारिस लाशें होती थी वो अपने खर्चे से उनको जलाता। तो बोला 11 वर्ष में मैंने 6000 लावारिस लाशों का दाह संस्कार किया। ऐसे बहुत सारी हस्तियां आई थी इस कॉन्फ्रेंस में शांतिमन में, तो बता रही थी कैसे कैसे संसार में लड़कियों को जो जला देते हैं एसिड डाल के जला देते हैं, तो उनकी भी एक संस्था थी, कैसे कैसे उनकी सेवा करते हैं। तो अर्थ यह है कहने का कि जब तक हमारे अंदर आत्मीयता का भाव नहीं है तो तब तक हम सेवा ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए कम्युनिकेशन में हमारा आत्मीयता का भाव अति आवश्यक है। इसलिए बाबा कहते जब भी आप किसी को ज्ञान सुनाते हो, किसी को बाप का परिचय देते हो, तो अगर हम अपने स्वरूप में स्थित होकर नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं उससे हम जो सेवा का हमको परिणाम मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, और परिणाम न मिलने के बाद उसका परिणाम ये होता है कि हम खुद ही उदासी में जाना शुरू कर देते हैं कि इतने साल से हम ज्ञान में चल रहे हैं, किसी को ज्ञान सुना रहे हैं, कोई चल नहीं रहा। ये अलग बात है कि हम बाद में सोच रहे थे कि ड्रामा में इसका पार्ट ये रहे, लेकिन कम से कम जितना समय वो आत्मा हमारे सन्मुख बैठी हुई है उतना समय तो कुछ अनुभूति करे, उतना समय तो वो खुशी का अनुभव करे, कोई तो उसके मन में भी कुछ बीज अंकुरित होने लगे कि हाँ हमको भी कुछ तो परिवर्तन होना है। तो कम्युनिकेशन जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस कम्युनिकेशन के अंदर हमको बहुत सारी चीजें ऐसे भर देनी है जो स्वतः ही कार्य करती रहे, आत्मीयता का भाव, दूसरा सम्मान का सत्कार का भाव, कहीं भी चाहे हम छोटे बच्चे से मिल रहे हैं, क्योंकि हर आत्मा अपने अपने सम्मान में अपने अपने आदर सत्कार में वो अंदर से अतृप्त रहती है। उसी की तो इच्छा है, हर आदमी को इच्छा किस चीज की, मुझे सम्मान मिले, स्नेह मिले, प्यार मिले, मोहब्बत मिले। तो हमारे कम्युनिकेशन में ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी दूरियां हो रही हैं, क्योंकि बाबा हमको एक ही माला में पिरोने के लिए आए हैं। आज की मुरली में ना माला की बात बाबा ने कही, तो उस अगर एक ही माला की सूत्र में हमको पिरोना है तो उसी तरीके से हमको कम्युनिकेशन देना पड़ेगा। हैं जी, हाँ। तो माला में पिरोने के लिए सभी एक ही माला के मणके हैं, तो हमको उसी तरीके से सबको आदर सत्कार स्नेह से, ताकि वो अपना बन जाए। जैसे भाई जी अभी लाए थे एक संत जी को, जन्मजय शरण महाराज, जन्मजय, हाँ, तो वो लेके आए थे वहां से। तो उन्होंने उनके अंदर भी हमने देखा कैसे उन्होंने बताया कि ब्रह्मा कुमारी सेवा कर रही है, और इसी मंच पर आके कितना अच्छा उन्होंने अपना अनुभव सुनाया। एक वास्तव में वो संसार से भी जुड़े हुए हैं, लेकिन शिव बाबा की महिमा उनके मुख से ऐसे निकल रही थी कि जैसे सचमुच वो एकदम पूरा भी कही है। और लग भी रहा था, क्योंकि उस समाज में रहना है तो छोड़ नहीं सकते उसको, उस समाज की सेवा करने के लिए उनको वैसे ही रहना पड़ेगा। तो इतना वो बिजी होते हुए भी यहां आकर गए इस मंच पर, उन्होंने शिलू बहन जी को सम्मान भी किया, सत्कार भी किया। तो देखा कम्युनिकेशन सिस्टम कहीं ठीक है, तभी तो वो इतनी बड़ी हस्ती इस मंच पर पहुंची है ना। अगर हम दूरी हम बना के रखते हैं तो सेवा में भी दूरियां बनी रहती हैं। इसलिए सेवाओं में सफल होने का ये भी एक बहुत अच्छा स्किल है, कम्युनिकेशन हमारा बिल्कुल ठीक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कम्युनिकेशन में हम दूसरों को केवल ज्ञान ही सुनाएं। लंबे समय तक देखा है कोई कोई बहनें केवल भोगी भेजती हैं, उनको कुछ गिफ्ट देती हैं, या जब कोई स्नेह मिलन का कार्यक्रम होता है तो उनको बुलाते हैं। तो लंबे समय के बाद क्योंकि हमारे से 24 आवर वाइब्रेशन निकलते रहते हैं, जरूरी नहीं हमारी वाणी से सेवा हो रही है। आज ही बाबा ने कहा ना, अगर तुम्हारा तन ठीक नहीं है तो मन से सेवा, और बाबा ने कहा तन अगर ठीक नहीं है, तंदुरुस्त नहीं है, लेकिन आपके चेहरे से सेवा हो सकती है। पेशेंट को भी पूछ सकते हो, पेशेंट डॉक्टर को पूछेगा तो डॉक्टर भी हैरान हो जाएगा। तो हाँ, पेशेंट डॉक्टर को ठीक कर देगा। तो हमारे वास्तव में 24 आवर हमारे बॉडी से, हमारे आत्मा से, चेहरे से किरणें विकिरण होती रहती हैं, निरंतर प्रवाहित हो रही है। जो हमारी सोच है, जो हमारे संकल्प हैं, जो हमारा एटीट्यूड है, दृष्टिकोण है, उसी अनुसार स्वतः सेवा हो रही है। तो हमको जब भी हम समन संपर्क में आते हैं, चाहे कोई ज्ञान में है या ज्ञान से दूर है, ज्ञान में आने वाला है, हमारा समन संपर्क में कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। कोई भी हमको चलते फिरते मिलते हैं, कोई राम राम बोलता है तो हमको ओम शांति नहीं जरूरी कहना, उसको ही राम राम ही कहना है। और धीरे धीरे एक दिन आता है वो सामने से ओम शांति कहना शुरू कर देता है। नहीं भी करे तो भी चलता है, हाँ। लेकिन हमको रिस्पॉन्स देना है, अगर सामने वाला करे नहीं करे अलग बात है, लेकिन हमको अगर सामने वाला हमको ब्राह्मण लाइफ में भी अगर ओम शांति करता है तो हमको रिस्पॉन्स जरूर देना चाहिए। ये अलग बात है कोई बिजी होता है, हमको नहीं दिया तो हमको मां डिसाल्टेड भी नहीं होना है, लेकिन हमको रिस्पॉन्स जरूर देना चाहिए। अगर हम रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, समझ लीजिए, और हमको पता है कि हम सामने वाला बोल रहा है, तो ये हमारे एक अभिमान की भी निशानी होती है, भले वो सूक्ष्म रूप से आए मोटे रूप से है। तो हमको ये रिस्पॉन्स जरूर करना चाहिए। फिर है कि जब भी हम किसी के संबंध संपर्क में आते हैं तो हमारी बातें अर्थ सहित होनी चाहिए। ऐसे नहीं हम कुछ ही बोलते जा रहे हैं, युक्ति युक्त, योग युक्त, राजयुक्त होनी चाहिए। क्योंकि जब तक युक्ति युक्त बातें नहीं है तो उनका सार नहीं होगा, और सामने वाला परिवर्तन भी नहीं होगा, समय भी, क्योंकि समय बहुत अनमोल है। तो सामने वाले के साथ हमको समय भी देखना है कि बाबा भी हमको कहते हैं समय कौन सा चल रहा है, संगमयुग समय है। अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है, आज की मुरली में है, लेकिन ये तो 1985 की बात थी। अभी तो टू लेट के कई सारे बोर्ड लग चुके हुए हैं, जो कि हम परिस्थितियों को देख ही रहे हैं। तो लगे ना लगे वो अलग बात है, लेकिन हमको क्या करना है, बाबा हमको देखना है। तो समय अनुसार हमको, समय परिस्थिति अनुसार पुरुषार्थ की अगर स्पीड तेज करनी है तो, क्योंकि 24 आवर हम तो योग में बैठ नहीं सकते हैं, तो हमारा जो कर्म क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र में भी हमको चलते फिरते उठते बैठते जो भी संबंध संपर्क में आते हैं, वो भी हमारा जीवन योगी बन जाना चाहिए। योगी जीवन, सुखदेव जीवन बन जाना चाहिए, दूसरों को सुख देते रहे सूरज की तरह। तो कम्युनिकेशन में आते समय एक तो आत्मीयता का भाव होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। दूसरा, हमारी जो हमारे मुख से बोल निकलते तो उसमें सत्यता होनी चाहिए। ऐसा नहीं हम कुछ बोल रहे हैं और है कुछ और है, अर्थात खौफनाक ना हो, अंदर कुछ और बाहर कुछ, दोहरा व्यक्तित्व ना हो। जो हम बोल रहे हैं वो पहले हम उसका अनुभव करें, और अनुभव करके अगर किसी को सुनाते हैं तो वो थोड़े शब्दों का भी तीर लग जाता है, नहीं तो विस्तार में जाते जाते कहीं ना कहीं सार खो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं सार में स्थित हो गए, अगर सामने वाले को परिचय देंगे तो उसका असर होगा, उसका परिणाम निकलेगा। तो यह है कि हमारी बातों में सत्यता होनी चाहिए, और नेक्स्ट है नम्रता होनी चाहिए, नम्र स्वभाव, क्योंकि नम्र व्यक्ति झुकता है ना, अकड़े तेरे मुर्दे की तरह होते हैं। तो नम्रता हमारी बातों में अगर होगी तो सामने वाले को भी उतना, क्योंकि हमारी प्रैक्टिकल लाइफ को देखते हैं सारे। जब तक हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में परिवर्तन नहीं है तब तक सामने वाला मानता नहीं है। और आजकल होता क्या है, वैसे तो संसार में बहुत सारी संस्थाएं हैं, लेकिन विशेष तौर पर संसार में भी क्या देखते हैं, अनेक जगह जा जाकर वो बेचारे थक गए अभी। इसलिए नीचे एक और आए थे करनाल से, जावेद खान, बहुत अच्छे वो स्पीकर हैं। तो वो बता रहे थे कि मैं कोई ऐसा भी कोना नहीं है जहां संसार का संस्थाओं में नहीं गया हूं, और ब्रह्मा कुमारी में दो बार आया हूं। तो उन्होंने खुद अपने मुख से कहा कि ब्रह्मा कुमारी संस्था के मंच का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, क्योंकि बोला मैं यहां प्रैक्टिकल में देख रहा हूं। तो वो कहते हैं मैं जाता हूं बहुत सारी संस्थाओं में जाता हूं, बहुत सारे देशों में जाता रहता हूं, लेकिन जो प्रैक्टिकल में उनको दिखाई देता है वो प्रैक्टिकल में यहां दिखाई दे रहा है। दिखाई तो वहां भी देता है लेकिन वो उतना नहीं दिखाई देता जितना यहां दिखाई दे रहा है। तो यहां कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, कोई पक्षपात नहीं है, पूरा अपनेपन की भावना से सेवा में लगे हुए हैं, किसी को स्वार्थ नहीं है, अपनी अपनी सेवा की और डिटैच हो गए, जैसे किसी को कोई लेना देना नहीं है, किसी को कोई आदेश निर्देश की जरूरत नहीं है। तो बता रहे थे यहां का जो आपस में कम्युनिकेशन सिस्टम है, आपस में जो तालमेल है वो कितना अच्छा है, उस तरीके से सेवाएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। बोला कितने सालों से मैं देख रहा हूं संस्था को, हमको यहां लाने के लिए बोला बहुत प्रयास किया गया, लेकिन अभी वो तीसरी बार आ गए इधर पिछले 4-5 साल से। बोला जब मैं इधर आया तो मैं पहले अपने दुर्भाग्य को कोसता रहा कि मैं इतने सालों से आया क्यों नहीं इधर। और यहां तक कि बड़े बड़े मिनिस्टर भी नीचे, रविशंकर प्रसाद जी आए थे, वेंकैया नायडू आए थे उपराष्ट्रपति, तो उन्होंने खुद बोला कि हमको कितनी बारी हमको यहां के लिए निमंत्रण मिला, आवेदन किया गया, लेकिन हम यहां नहीं पहुंच पाए। अब हम यहां पहुंचे तो पता चल पा रहा है कि इस मंच से कितनी बड़ी बड़ी सेवाएं हो रही हैं। और एक और सांसद आए थे यूपी से, तो उन्होंने क्या कहा, तो उनका इंटरव्यू ले रहे थे मीडिया वाले, तो बोला भारत सरकार तो जो स्वच्छता अभियान, ये प्लास्टिक मुक्ति अभियान, पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण अभी चला रही है, लेकिन मैं देख रहा हूं ब्रह्मा कुमारी संस्था तो कितने सालों से पहले चालू कर दिया हुआ है। तो लोगों की जो नजर है वो हमारे कार्य पर रहती है, ऐसा नहीं कि हम सोच रहे कि हम सेवाएं चल रहे हैं संसार में, पता नहीं हमारे इर्द गिर्द हजारों आंखें लाखों आंखें हमको देख रही हैं। बाबा कहते हैं तुम विश्व की स्टेज पर हो, तुम्हारा एक एक संकल्प जो वायुमंडल में जा रहा है, तुम्हारा एक एक बोल जिसको सारी दुनिया रीड कर रही है, संकल्प को रीड कर रही है, तो हम संसार के समक्ष हैं, विश्व स्टेज के रंगमंच के ऊपर हैं। तो हमारे जो कम्युनिकेशन सिस्टम दिन प्रतिदिन सुधार होता जाना चाहिए। बाबा ने कहा मैं तुमको सुधारने आया हूं, है ना। कल का स्लोगन क्या था, परसों का, बीपीएस बनना है तो बीवी बनो, बिगड़ी को बनाने वाला बनो, इन्होंने ऐसे बताया बाप समान बनना है तो बिगड़ी के बना, तो माना हम बिगड़ी को बनाने के लिए आए, ऐसा ना हो कि हमारे बोल समाज को बिगाड़ दें या घर के माहौल को बिगाड़ दें या रिश्तों को बिगाड़ दें। तो हम सुधरने के लिए आए हैं और सुधारने के लिए आए हैं, लेकिन सबसे पहले हमें स्वयं को सुधारना है। तो दिन प्रतिदिन हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम में सुधार होता जाना चाहिए। तो ये था कि हमारे स्वभाव में भी नम्रता होना चाहिए, जो अगर सामने वाला कुछ बोलता भी है, क्योंकि हर व्यक्ति के बुद्धि का स्तर अपना अपना होता है, हमारी अपेक्षा अनुसार नहीं हो सकता वो, तो हमको वो एक्सेप्ट करना है। और उसके लिए अगर हमारी शुभ भावना कामना है तो दिन प्रतिदिन निश्चित तौर पर उसमें भी सकारात्मक परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। अगर हमारी शुभ भावनाओं में कमी है तो सामने वाला परिवर्तन नहीं होगा, वो भी वैसे चलता रहेगा। इसलिए तो यहाँ के ज्ञान का सार क्या है, सो परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। लेकिन अपेक्षा आजकल अधिकतर घरों में ही होती है कि हमारे बच्चे नहीं सुधर रहे हैं, हमारी पत्नी की प्रॉब्लम है, हमें पति की प्रॉब्लम है। वास्तव में प्रॉब्लम तो अपने आप ही हम खुद क्रिएट करते हैं। हमने कुछ दिन पहले किसी को एक, मैं परसों की मुरली में था सेंटेंस कि तुम्हें टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना, धंधे दौरे में इतना नहीं बिजी हो जाना है कि जो तुम 21 जन्मों का ऊंच पद का अपना पद खो दो। तो हम के ये भेजा, किसी को भेजा, तो उसने अपनी सारी बोला मैं जब से इधर से गया हूं तो मैं बहुत अच्छा टाइम टेबल चला रहा हूं, लेकिन साथ में अपने घर की सारी प्रॉब्लम लिख दी। तो वो देखो कहां, अभी भी बुद्धि वहीं लगी हुई है। तो जिस चीज पर हमको फोकस देना चाहिए वहां नहीं है। तो सारे दिन में वो बातें सिद्ध करते हैं कि सारा दिन ध्यान उधर ही लगा हुआ है। जिस चीज का रिस्पॉन्स देना चाहिए, होना ये चाहिए था कि अगर हमने जो हमने मैसेज भेजा तो सामने से भी उसी तरह का मैसेज आना चाहिए कि हम भी पुरुषार्थ के लिए थोड़ा प्रोत्साहित हों। लेकिन सामने होने वाला अपनी समस्या है, इसका अर्थ यह है कि सारा दिन हम अपने अपने अंदर में समस्या को पकड़े रखा हुआ है, जो उनके पास है वही रखा हुआ है। तो हम पकड़ के रखे हुए हैं। वास्तव में पकड़ना किस चीज को है और किस चीज को छोड़ना है, इससे जब हम विस्मृत हो जाते हैं तो ही हम अपने पुरुषार्थ की स्पीड को नहीं बढ़ा पाते हैं। इसलिए इस ब्राह्मण लाइफ में बहुत सारी सूक्ष्म चीजें हैं। पुरुषार्थ बाबा कहते हैं दिन प्रतिदिन भी पुरुषार्थ भी सूक्ष्म होता जाता है। महान पुरुषार्थ महान आत्माओं का या तीव्र पुरुषार्थियों का पुरुषार्थ भी मेन पुरुषार्थ होता है। तो कम्युनिकेशन सिस्टम है ये हमारा दुख दो सुनाएगा, हाँ दुखड़े रोना शुरू कर देंगे तो एक दूसरे को आश्वासन देना शुरू कर देते हैं। उससे बोला आपका क्या दुख है, दुख तो हमको पूछो दुखों के पहाड़ लगे हुए हैं। तो हम उनको पकड़ के बैठे हैं, छोड़े तो छूटे। तो कहीं ना कहीं ज्ञान का अभाव रहता है, या तो ज्ञान है लेकिन उसकी ताकत, वो ज्ञान ताकत नहीं बना है। इसलिए बाबा कहता ना ज्ञान तलवार में जौहर चाहिए। ज्ञान तो है लेकिन उस समय पर काम में नहीं ला रहे हैं, उसको हमने अपनी शक्ति नहीं बनाया है। इसलिए इस ज्ञान को जीतना हम जीवन में लाते जाएंगे या पढ़ते जाएंगे, और इस ज्ञान में तो हमेशा डूबे रहना चाहिए, क्योंकि बिना ज्ञान के योग भी नहीं लगेगा और बिना ज्ञान की ताकत भी नहीं आएगी, ठहरेगा नहीं बुद्धि में, क्योंकि ज्ञान इतना बड़ा अमृत है, इतना ऊंचा अमृत है कि इसमें तो जहर इतना जन्मों से भरा हुआ है और सीधा आते वो भी जहर बन जाता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी अटेंशन रखनी पड़ेगी। इसलिए सबके साथ तालमेल रखते हुए हमें कम्युनिकेशन अर्थात संवाद, संबंधों में संवाद जिसको कहा जाता है, तो अपने संवाद को भी बेहतर बनाना है ताकि हमारा पुरुषार्थ नेचुरल होता जाए। नहीं तो चाहे सेंटरों में है चाहे लौकिक परिवार में, दिन प्रतिदिन देखा जा रहा है दूरियां बढ़ती जा रही हैं। तो हमको दूरियां बढ़ाने की बजाय दूरियों को समाप्त करना है ताकि संबंधों में समरसता आए, एकता आए, मधुरता आए। और कम्युनिकेशन सिस्टम में एक तो बताया कि आत्मीयता का भाव होना चाहिए, आदर सत्कार करना है, अहंकार अभिमान नहीं आना चाहिए, किसी से हमको ऐसी अपेक्षा नहीं रखनी है अगर हम सेवा करें तो हमको ये मिले, अपेक्षा रहित होना चाहिए, स्वार्थ भावना ना हो, निस्वार्थ भावना हो, सत्यता हो, उन बातों में दम हो, नम्रता हो। फिर और एक बात है न्यारापन होना चाहिए। ऐसा भी ना हो कि हम सामने वाले से बातचीत कर रहे हैं और सामने वाला प्रभावित हो एकदम हमारे ऊपर ही लट्टू हो जाए, वो उल्टा हो जाएगा फिर। तो हमको डिटैच भी होना है, जैसे बाबा कहते ना जैसे बाप जितना प्यारा है ना उतना न्यारा भी, एक सेकंड में डिटैच हो जाता है। तो हमको ये न्यारा होने की भी कला सीखनी है। और हमने देखा अगर प्यारा होने की हमको अंदर में इच्छा रहती है तो हमारे पुरुषार्थ में बहुत बाधक बनती है, वो बार बार ढूंढेंगे और हमारा टाइम वेस्ट चला जाता है उसमें। इसलिए न्यारा बहुत सारी बातों में देखना पड़ता है, जैसे हम अपने जो इसमें मोबाइल में डीपी लगाते हैं तो डीपी नहीं लगाई, तो एक बार हमने बहुत पहले लगाई थी, तो लगाने के बाद फिर यहाँ आके ढूंढते हैं सुशील कौन है, वो आके फिर हमारा टाइम वेस्ट चला जाता है। तो फोटो आया था ना ऊपर में, तो उसमें हम देखा कि जितना हम न्यारा रहते हैं इन चीज़ों से तो हम अपने आप ही सबके प्यारे बन जाते हैं। और प्यारा बनने की जरूरत क्या है, प्यार भगवान हमको कर रहा है, उसने इतना प्यार कर दिया तो दूसरों के प्यार की आवश्यकता भी की है। इसलिए डिटैचमेंट भी होना जरूरी है अगर हम सेवा करते हैं, या हमारी बातों से कोई इतना प्रभावित ना हो जाए कि बार बार बस उसी की बात सुने, उसी हमको सीखना है उससे कि वो कैसे प्यारा बन रहा है, उसकी बातें कैसे दिन प्रतिदिन परिवर्तन निखार आ रहा है, उसमें शक्ति बढ़ रही है। तो हमको ये है कि न्यारापन भी होना अति आवश्यकता है। दूसरा है वार्तालाप करते करते हमें निर्भयता चाहिए, डरना नहीं, क्योंकि ज्ञान हमको निर्भय बनाने वाला है। स्वयं सुप्रीम अथॉरिटी हमारे साथ में है जो कि सदा निर्वैर है, किसी से जिसका बैर नहीं है, तो हमारा भी किसी से बैर थोड़ा नहीं है। अगर कोई पिछले जन्म के हिसाब किताब हैं भी हैं तो हमको खुशी खुशी उनको चुकतू करके सामने वाले के साथ जो बातचीत में आते हैं पूरे निडरता के साथ, या जो भी हम किसी को परिचय देते हैं तो निडरता के साथ, क्योंकि हम कल्याणकारी बाप के कल्याणकारी बच्चे हैं। तो जो वसुदेव कुटुंब की भावना हमारे अंदर वो है, अब हमको बाबा ने अंदर वो स्मृतियां दिला दी हैं, ऊंची ऊंची स्मृति दिला रही है कि जो उसके संस्कार है वो ही हमारे संस्कार है। बाप के संस्कार था ना, पांच दिन पहले मुरली में था कि जो बाप के संस्कार हैं वही तुम बच्चों के संस्कार हैं। तो हमको निडर होकर सेवा करेंगे तो भी हम सेवा में सफल होंगे और हमारा कम्युनिकेशन दिन प्रतिदिन बेहतर होता जाएगा। तो यह है कि निडरता होनी चाहिए, नम्रता होनी चाहिए, न्यारापन होना चाहिए, स्नेह प्रेम होना चाहिए। फिर कहीं ना कहीं हमको सहन भी करना पड़ता है, सहनशील जरूरी है, क्योंकि घर में बहुत सारे लोग होते हैं, कोई कुछ भी बोल देगा तो उसमें हमको समाना भी पड़ेगा, सहन भी करना पड़ेगा। अगर हम उसी समय प्रतिक्रिया कर देते तो संबंधों में दूरियां बढ़ जाएंगी। और आजकल तो ऐसे है कि जो नई पीढ़ी है उसमें इतनी ताकत नहीं है, नहीं तो शाम तक अपना काम तो वहां कर लेते हैं वो, किसी ने थोड़ा सा बोल दिया ये काम से। कुछ दिन था ना पहले न्यूज़पेपर में था कि मुंबई में किसी ने फोन मांगा, बच्चे ने माँ बाप से कि मुझे 40,000 वाला फोन चाहिए। तो माँ बाप कहते हमारे में इतना सामर्थ्य नहीं, हम नहीं दे सकते इतना महंगा। तो कुल मिलाकर अंत में बात बनी कि 35,000 का दे देंगे तुमको। तो बच्चा फिर भी अट गया, बोला नहीं 35,000 का नहीं, मुझे 40,000 का चाहिए। तो माँ बाप बोला तुमको 35,000 का दे रहे भी कम है क्या? बोला नहीं मुझे नहीं चाहिए। तो फिर माँ बाप ने वो माँ बाप से चला गया रूठ के और शाम तक काम उसने खत्म कर दिया। बताइए, अब दिवाली में एक छोटा सा पटाखा है, बोला छोटा बम नहीं मुझे बड़ा बम चाहिए, अब नहीं दिया तो कुएं में छलांग मार। तो अभी आने वाली आत्माओं में ताकत नहीं, इसलिए बाबा ने कहा अंत में ऐसी आत्माएं आएंगी जिनको आपको अपनी शक्ति से चलाना पड़ेगा, उनमें उतनी शक्ति नहीं है। तो पहले से हमको ये इतनी शक्ति भर लें ताकि दूसरों में भी सामर्थ्य भर सके। तो कहीं ना कहीं हमको बहुत सारी बातें सहन करनी है, समानी है, सामने वाले को शक्तिशाली बनाना है। तो कम्युनिकेशन एक ऐसी स्किल है कि बहुत सारे समाज के अलग अलग वर्गों को, चाहे वो किसी, चाहे वो परिवार में है, सामाजिक है, आर्थिक है, व्यापारिक है, आध्यात्मिक है, हम समाज के हर वर्ग को अपने कम्युनिकेशन से जोड़कर बाबा से उनका पूरा हक दिला। जैसे बताया ना बाबा ने पूरा हक, आधा अधूरा नहीं है, नंबर वार नहीं, पूरा यथाशक्ति नहीं, पूरा हक उनको दिला सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम उसका पूरा संपूर्ण बताया ना, संपूर्ण यथाशक्ति नहीं, तो लेकिन वो संपूर्णता की तरफ हमारे अग्रसर है, हम खुद उस आगे बढ़ते रहें। बाबा ने बताया ना तुम्हारे ये संसार जो है मिट्टी की दुनिया है, अभी हमको लाइट की दुनिया में जाना है। तो अगर हम सारे दिन में इस मिट्टी की दुनिया का चिंतन करते रहेंगे तो भी हमारे कम्युनिकेशन में क्या होगा, मिट्टी के संस्कार, मिट्टी जैसे सोच विचार चलेगी। इसलिए हमको अगर ऊपर वाली जो लाइट की दुनिया है, आत्माओं की दुनिया है, वो अगर हमारे जहन में चलती रहेगी, उसका चिंतन चलता रहेगा, तो आत्माओं को हम देह से डिटैच कर पाएंगे, उनके पांव जो है वो भी धरनी से हम ऊपर उठा पाएंगे। शरीर से भी उड़ना है तुम्हें? हाँ नहीं, ओ नहीं नहीं, ओ आदत है, वो आया था, जो विदेशी आए हैं उड़ने की आदत है, अर्थात वो एरोप्लेन से उड़ के आते हैं, आदत है। अब मन से भी उड़ो, तो ये था आज के मुरली में। और काठमांडू तो बस में बोला है, उसमें शायद वो प्लेन में नहीं आए होंगे, बस फिर ट्रेन, 85 की बात है। तो ये था कि कम्युनिकेशन सिस्टम में हमको बहुत सारी बातें सीखने की होती हैं। तो ये तो हमको एक दिन में थोड़ा बहुत जो भी हमको टाइम मिला चिंतन किया, और भी हम गहराई से चिंतन करके कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ा सकते हैं। और जितना हमारा कम्युनिकेशन बेहतर होगा, सेवा अच्छी होगी, हम खुद ही निर्विघ्न बनते जाएंगे। बाबा ने आज 20 श्लोक में कहा ना, विघ्न नहीं बनना है, विघ्न विनाशक बनना है, निर्विघ्न बनना है। तो कम्युनिकेशन एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है जिसको हमको खुद के स्तर, क्योंकि हर व्यक्ति का संबंध संपर्क अपना अपना होता है, कर्म क्षेत्र अपना अपना होता है, हिसाब किताब अपने अपने होते हैं। हम जिस स्थान पर सेवा करते हैं वो सामने वाला इंचार्ज है, या हम छोटे हैं, हम सीनियर हैं, या वो जूनियर है, बाहर हमको कम्युनिकेशन कैसे रखना है, या स्कूल में जाते हैं, या बैंक में सर्विस करते हैं, कहीं भी कर्म क्षेत्र पर हैं, तो कम्युनिकेशन सारा समय पर परिवर्तनशील है। लेकिन वहां हमको कैसा करना है, समय देकर, व्यक्ति देकर, परिस्थितियां देकर, कहां किसको कौन सी बात कहनी है, तो ये हमको बातें सीखने की मिलती हैं। ये बहुत सारी बातें हमने जगदीश भाई से सीखी, जगदीश भाई की हम क्लास सुनते थे, कैसे उनका देखो छोटे बच्चों की तरह छोटे की तरह बन जाते थे, और बड़ों के साथ। जगदीश भाई तो ऐसे थे कि दादियां भी उनकी क्लास में आके पहले पहुंचती थी, दादियां भी उनसे थोड़ा एक्टिव, जब जगदीश भाई की क्लास होती थी तो दादियां भी तुरंत एक्टिव हो जाती थी। तो बताओ उस आत्मा का कितना प्रभाव है प्रैक्टिकल में। और बहुत सारे जगदीश भाई ने फिर एक दो एग्जाम्पल बताया कि उन्होंने अपने युक्ति से कैसे इस यज्ञ में समर्पित होने के लिए माँ बाप से छुट्टी ली। तो उन्होंने बताया अपनी किताब में कि जब मैं पिताजी से छुट्टी लेने के अगले में भगवान के यज्ञ में समर्पित हो जाऊंगा, तो पिताजी ने तो पहले तो बोला नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है। तो फिर जगदीश भाई ने उनको अपने पिताजी की याद दिलाए कि आप ही बचपन में कहते थे कि ये जब आप मेरी उंगली पकड़ कर लेके जाते थे बाजार में तो लोगों को आप कहते थे ये भगवान का बच्चा है। तो अभी आपने कहा तो मैं तो बचपन से पक्का कर ले कि मैं भगवान का बच्चा हूं, तो अभी आप मुझे छुट्टी दे दो। बोला मैं तो ऐसे ही कहा था। बोला ऐसे कैसे कहा था, मैं तो अभी पक्का मान लिया। तो फिर जगदीश भाई को बोला ठीक है, अब तुमने मान ही लिया, ठान ही लिया तो तुम भगवान का बच्चा है। ऐसे आदि शंकराचार्य के, आदि शंकराचार्य ने जब घर को माँ बाप माँ को छोड़ना था, माँ का उनके बहुत मोह था उनके साथ, तो शंकराचार्य ने भी युक्ति क्या लगाई थी, बोला मैं स्नान करने गया, बोला माँ मुझे मगरमच्छ ने पकड़ लिया, अब तो भगवान ही बचा सकता, दूसरा कोई नहीं बचा सकता है, अगर तुम भगवान से प्रार्थना करो, भगवान ये आपका बच्चा है, बचाओ बचाओ हाय है, और अंदर था तो कुछ भी नहीं है। तो युक्ति से हम युक्ति, तो वो भी कम्युनिकेशन कैसा था। और एक एक जगह और था, एक एक बाल्डन था जो कि पागलों को संभालता था। तो क्या हुआ, एक वो बिल्डिंग से बाहर निकला, वार्डन नीचे आया होगा तो देखा ऊपर से एक पागल जो है ना छत पर पहुंच गया, और वो छलांग मारने वाला, वो छलांग मार दे तो उसके ऊपर सारी बात आ जाएगी, छलांग मार के मर गया तो क्या हुआ, इसकी जिम्मेवारी मेरे सिर पर आ जाएगी। अब बाल्डन ने युक्ति रचाई, वो गया ऊपर वापस, तो वो पूछा पागल को तुम इधर क्या कर रहे है, बोला बस मैं अभी ये मेरे हाथ जो है ना पंख हैं और मैं छलांग मारूंगा और मैं उड़ जाऊंगा इधर से। तो बोले तो मर जाएगा इसके क्या करेगा। तो उसने युक्ति रची, बोला ऐसे थोड़ा उड़ना होता है, ये तो कुछ काम नहीं है, हम धरती से नीचे से ऊपर को उड़ेंगे, आप ऊपर ऊपर से थोड़ा उड़ेंगे, हम नीचे जाके दोनों उड़ेंगे। तो उसको प्यार से वो नीचे लेके आ गया। तो युक्तियां कुछ होती हैं दूसरों को बचाने के लिए। तो बाबा भी अनेक प्रकार की हमको युक्तियां बताते रहते हैं। तो कुल मिलाकर हमको कम्युनिकेशन में देखना है कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, ताकि इस जो सेवा को है हम निर्विघ्न रूप से आगे ले जाते रहे। ओम शांति।
मन ये जितना नारा